नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कोलकाता में अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधार समिति के एक नए कार्यक्रम में इन सुधारों के लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य देश की कर और राजस्व प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से लागू जीएसटी ढांचे के पुनर्गठन से पहले राज्यों के सुझावों पर गहन चर्चा की गई थी। श्रीमती सीतारामन ने कहा केवल 8 महीनों में ये सुधार लागू किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की थी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार केंद्र के पूर्ण सहयोग से एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में बिहार को विकास परियोजनाओं और कार्यों के लिए 14,85,000 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता दी है। बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में बिहार को केवल 2,80,000 करोड़ रुपए मिले थे। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा का उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति है।
यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक मंच पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन में श्री सिंह ने कहा कि प्रयास और कार्य राष्ट्रहित के अनुरूप होंगे तो वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। देश भर के 7 नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब भारत के स्थलों की संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है। नए शामिल स्थलों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, मेघालय की गुफाएं, नागा हिल ओफियोलाइट, आंध्र प्रदेश की एर्रामट्टी डिब्बालू, तिरुमला पहाड़ियां और केरल की वर्कला चट्टाने शामिल हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होंगे। श्री वैष्णव ने आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लोगो और प्रमुख गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बैंकों से भी परामर्श किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार लोगों को अवैध और नकली व्यापार से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मेघवाल ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि हाल में किए गए जीएसटी सुधारों से लोगों को काफी राहत मिली है। फ्रांस में आज लाखों लोग मितव्ययिता योजनाओं के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यूनियनों ने सरकार से आगामी बजट कटौती को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारी खर्च बढ़ाने, अमीरों पर अधिक कर लगाने और पेंशन में बदलाव को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक देश के पूर्वी और मध्य भागों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान है। और खेल में पीवी सिंधु ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की 6ठी वरीयता प्राप्त पोर्नपावी चोचुवोंग को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।